एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी आज की दुनिया को समझने के लिए बेहद जरूरी है।
हाँ, कौन सी किताब है?
डैनियल यर्गिन की किताब है द क्वेस्ट, एनर्जी, सिक्योरिटी एंड द रीमेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड।
द क्वेस्ट,
बिल्कुल।
ऊर्जा यानी एनर्जी, ये शब्द आजकल हर तरफ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें उफ।
हाँ, आसमान छू रही हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की चिंता तो है ही।
तो ये किताब इन्हीं सब मुद्दों की तह तक जाती है।
बिल्कुल। यर्गिन बताते हैं कि कैसे ऊर्जा का ये पूरा खेल, मतलब सिर्फ तेल या बिजली नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी राजनीति और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को नए सिरे से घड़ रहा है। अच्छा, मतलब वो बड़ी अनदेखी ताकतें जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं।
हाँ, उन्हीं को समझने में ये किताब मदद करती है।
और इस पहेली को सुलझाने के लिए डैनियल यर्गिन, इनसे बेहतर कौन हो सकता है? ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के तो ये दिग्गज माने जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं, S&P ग्लोबल के वाइस चेयरमैन हैं और कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन सेरा उसके संस्थापक भी।
सही बात है, उनकी पिछली किताब द प्राइस तो जैसे तेल के इतिहास पर एक क्लासिक है।
एकदम, और द क्वेस्ट उसी कहानी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसका कैनवस बहुत बड़ा है।
मतलब सिर्फ तेल नहीं?
नहीं, इसमें तेल, गैस, कोयला, न्यूक्लियर, सोलर, विंड सब कुछ है। और खास बात यह है कि यर्गिन किसी एक तरफ झुके हुए नहीं लगते हैं।
अच्छा, मतलब निष्पक्ष हैं।
हाँ, वो एक इतिहासकार की नज़र से बहुत संतुलित तरीके से तकनीक, पैसे और सियासत के जो उलझे हुए धागे हैं ना, उन्हें खोलते हैं। वो किसी खास एनर्जी के वकील नहीं बल्कि कहानीकार हैं, पूरी तस्वीर सामने रखते हैं।
तो किताब का बड़ा सवाल क्या है? जैसा नाम से ही जाहिर है, द क्वेस्ट यानी एक तलाश।
हाँ, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी तलाश है, एक ऐसे एनर्जी फ्यूचर की जो महफूज हो, मतलब सिक्योर हो
और हमारी जेब पर भारी ना पड़े।
हाँ, सस्ती हो और हमारे पर्यावरण को भी बचाए, टिकाऊ हो।
ये तो तीनों एक साथ पाना मुश्किल लगता है।
बिल्कुल, और यर्गिन का मुख्य तर्क भी इसी कश्मकश पर है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो हमारी पुरानी दुनिया है, तेल, गैस, कोयला, न्यूक्लियर पर चलने वाली,
जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की जान है।
हाँ, लेकिन अब ये पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा और डामादोल हो गई है। मांग बढ़ रही है, देशों में खींचतान है और नई तकनीकें खेल बदल रही हैं।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ नई ऊर्जा की खोज चल रही है, सोलर, विंड, बायोफ्यूल और एक बहुत अहम चीज, एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऊर्जा बचाना।
हाँ, ये अक्सर भूल जाते हैं लोग।
बिल्कुल, यर्गिन इनकी ताकत और कमजोरियां दोनों दिखाते हैं और बताते हैं कि इन्हें दुनिया भर में फैलाना कितना कितना मुश्किल काम है।
तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या नई एनर्जी जीत जाएगी?
देखिये, यर्गिन कहते हैं कि भविष्य ऐसा नहीं होगा कि बस पुरानी एनर्जी बंद हुई और नई शुरू हो गई, स्विच ऑफ स्विच ऑन जैसा नहीं।
अच्छा, तो फिर कैसा होगा?
ये दशकों तक चलने वाला एक मिला जुला खींचतान भरा दौर होगा, मतलब पुरानी और नई एनर्जी साथ साथ चलेंगी, कभी लड़ेंगी कभी जुड़ेंगी।
और इसी चक्कर में हमारी दुनिया बदल जाएगी?
पूरी तरह बदल जाएगी। ये किताब हेडलाइंस के पीछे छिपी असली कहानी बताती है, नीति बनाने वालों से लेकर आम लोगों तक, सबके लिए है ये।
चलिए, अब किताब के अंदर थोड़ा और झांकते हैं। पहला हिस्सा है तेल की नई दुनिया। ये शायद द प्राइस का सीक्वल जैसा है।
हाँ, कह सकते हैं। ये 90 के दशक के बाद तेल बाजार में जो उथल पुथल हुई उसकी कहानी है। एक बड़ा बदलाव ये दिखाते हैं कि कैसे खेल बदल गया है।
कैसे?
पहले बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियां थी ना, जैसे एक्जॉन, शेल, इनका दबदबा था। अब बाजी राष्ट्रीय तेल कंपनियों के रात में है,
जैसे सऊदी अरब के एरामको या रूस की गाज़प्रोम।
बिल्कुल, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर भंडार अब इन्हीं के पास हैं, सत्ता का केंद्र बदल गया है।
और इसी से जुड़ा है वो पीक ऑयल वाला किस्सा, है ना, कि तेल खत्म होने वाला है।
हाँ, बड़ा दिलचस्प किस्सा है वो। कई बार भविष्यवाणी हुई कि भाई तेल खत्म होने वाला है, पर यर्गिन बताते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हर बार इस डर को गलत साबित कर दिया।
नई तकनीकें आ गईं।
हाँ, नई तकनीकें आईं और ऐसे स्रोतों से भी तेल गैस निकल आया जहां पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसी दौरान चीन एक बड़े खिलाड़ी की तरह उभरा,
जिसकी ऊर्जा की भूख ने पूरी दुनिया में संसाधनों की दौड़ तेज कर दी।
बिल्कुल, और तेल सिर्फ जलाने की चीज नहीं रहा, वो एक फाइनेंशियल चीज भी बन गया। वॉल स्ट्रीट भी इसमें कूद पड़ा।
अच्छा, तो तेल की दुनिया तो बदली, पर यर्गिन कहते हैं कि सिर्फ तेल ही काफी नहीं है।
नहीं, पूरी सप्लाई चेन देखनी पड़ती है। यहीं से किताब का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, आपूर्ति सुरक्षित करना,
यानी सप्लाई को सिक्योर करना।
हाँ, युर्गिन का तर्क है कि किसी भी देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही है, एनर्जी की सप्लाई महफूज रहे ताकि देश चलता रहे।
और इसमें नेचुरल गैस की भूमिका बड़ी है,
बहुत ज्यादा। यहाँ पर नेचुरल गैस की कहानी दिलचस्प हो जाती है। पहले ये पाइपलाइन के जरिए बस आसपास के इलाकों में ही बिकती थी, क्षेत्रीय चीज थी।
हाँ, सही कहा।
फिर आई LNG टेक्नोलॉजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
अच्छा, जिसमें गैस को ठंडा करके जहाजों में भरते हैं।
हाँ, और फिर दुनिया में कहीं भी भेज दो। इसने गैस को तेल की तरह एक ग्लोबल कमोडिटी बना दिया, गैस का वैश्वीकरण हो गया।
लेकिन ये सप्लाई कितनी नाजुक है, इसका उदाहरण वो हॉर्मुस जलडमरू मध्य है शायद।
बिल्कुल सही पकड़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस, फारस की खाड़ी का वो संकरा रास्ता जहां से दुनिया का कितना सारा तेल गुजरता है। जरा सी गड़बड़ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है।
ये तो डराने वाली बात है।
है, और युर्गिन ये भी दिखाते हैं कि कैसे कुछ देश जैसे रूस अपनी गैस कंपनी गैजोप्रोम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं
यूरोप पर दबदबा बनाने के लिए।
हाँ, खासकर यूक्रेन, पश्चिमी यूरोप, उन पर असर डालने के लिए। मतलब साफ है, पाइपलाइन, LNG टर्मिनल, टैंकर, ये सब सिर्फ लोहे लकड़ नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े मोहरे हैं।
तेल और गैस के बाद आता है बिजली का नंबर, किताब का तीसरा भाग, विद्युत युग।
हाँ, और युर्गिन बिजली को आधुनिक दुनिया का जीवन रक्त कहते हैं, और सही भी है। जरा सोचिए, क्या हम बिजली के बिना एक दिन भी रह सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
और बिजली ग्रिड, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल मशीन है। हर पल, हर सेकंड मांग और सप्लाई का एकदम सटीक संतुलन साधना पड़ता है। एक सेकंड की चूक भी भारी पड़ सकती है।
यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं होंगी।
बहुत हैं। पश्चिमी देशों में ग्रिड पुराना हो रहा है, उसे अपग्रेड करना है।
और भारत चीन जैसे देशों में,
यहाँ तो करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालना है, उसके लिए सस्ती बिजली चाहिए। बिल्कुल, और इसका सबसे आसान रास्ता अक्सर कोयला होता है। ये कड़वी सच्चाई है, भले ही पर्यावरण को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। युर्गिन इस दुविधा को दिखाते हैं।
और फिर न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी तो है ना इस भाग में।
हाँ,
उसका विवादित मुद्दा।
युर्गिन 2011 की फुकुशिमा त्रासदी का गहराई से विश्लेषण करते हैं,
जापान वाला हादसा।
हाँ, और दिखाते हैं कि कैसे इस एक हादसे ने जर्मनी और जापान जैसे देशों को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दिया। न्यूक्लियर पावर कार्बन तो नहीं छोड़ता, पर सुरक्षा का सवाल वो हमेशा बना रहता है।
यहीं से कहानी शायद पर्यावरण की तरफ मुड़ती है। चौथा भाग, जलवायु और कार्बन।
हाँ, अब हम उस हाथी से नजरें नहीं चुरा सकते जो कमरे में बैठा है, यानी क्लाइमेट चेंज। युर्गिन इसे आज की सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, ऐसी चुनौती जो एनर्जी से जुड़े हर फैसले पर हावी हो रही है।
वो क्या समझाते हैं इस बारे में?
वो समझाते हैं कि कैसे क्लाइमेट साइंस विकसित हुआ, कैसे दुनिया भर की सरकारें इससे निपटने की कोशिश कर रही हैं या कोशिश करने का नाटक कर रही हैं। और वो कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे कार्बन टैक्स,
यानी कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाना।
हाँ, या कैप एंड ट्रेड, मतलब प्रदूषण का एक कोटा तय कर देना और कंपनियों को उसका व्यापार करने देना।
और वो CCS वाली तकनीक, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज।
हाँ, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर जमीन के नीचे दबा देना। सुनने में अच्छा लगता है, पर अभी ये बहुत महंगा और मुश्किल है, मतलब स्केल पर करना।
और वैश्विक स्तर पर सहमति बनाना, वो तो और भी मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल। ये रिगिन क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर कोपेनहेगन और पेरिस समझौतों तक की कहानी बताते हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच जिम्मेदारियों को लेकर कितनी गहरी खाई है, ये साफ दिखता है। एक तरफ विकास की जरूरतें हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने का दबाव। संतुलन बनाना बहुत कठिन है।
इसके बाद पांचवा भाग आता है, नई ऊर्जाएं, यानी अब हम विकल्पों की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, यहां फोकस है फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस, कोयला, इनके विकल्पों पर। ये एनर्जन, सोलर, विंड, बायोफ्यूल की तरक्की को मानते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो बहुत यथार्थवादी हैं, उनकी सीमाओं का भी आकलन करते हैं।
जैसे?
जैसे वो सोलर पैनल की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट का जिक्र करते हैं।
हाँ, वो तो कमाल हुआ है।
बिल्कुल, जिसके पीछे चीन की मैन्युफैक्चरिंग और जर्मनी जैसी सरकारों की सब्सिडी का बड़ा हाथ है। लेकिन वो ये भी याद दिलाते हैं कि सोलर और विंड एनर्जी के साथ एक बड़ी चुनौती है,
वो रुक रुक कर चलने वाली
इंटरमिटेंसी।
हाँ, वही, मतलब सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं बहती, तो जब ये काम नहीं कर रहे हो तब बिजली कहाँ से आएगी?
बैटरी।
हाँ, इसलिए हमें अच्छी और सस्ती बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत पड़ेगी, ये बहुत अहम है।
और वो ऊर्जा दक्षता को पांचवां ईंधन कहते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, जरूरी है मौजूदा ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाना। ये सबसे सस्ता, सबसे तेज और सबसे साफ तरीका है एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने का।
ये बात तो बिल्कुल सही है, अक्सर नजरअंदाज हो जाती है।
हो जाती है
बिल्कुल। और फिर आता है छठा और आखिरी भाग, भविष्य की राह। यहाँ क्या होता है?
यहाँ यर्गन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और यहीं पर वो एक ऐसी चीज का जिक्र करते हैं जिसने पिछले दशक में एनर्जी की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया।
क्या चीज?
अमेरिकी शेल क्रांति।
ओ हाँ, फ्रैकिंग वाली।
हाँ, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, फ्रैकिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, इन तकनीकों ने अमेरिका में जमीन के नीचे फंसे तेल और गैस के विशाल भंडार खोल दिए, टाइट ऑयल और शेल गैस।
और इसका असर?
जबरदस्त असर। अमेरिका जो कल तक एनर्जी का बड़ा आयातक था, वो निर्यातक बन गया।
सच में?
हाँ, इसने ओपेक और रूस जैसे पुराने खिलाड़ियों के दबदबे को सीधी चुनौती दी और पूरी दुनिया का एनर्जी नक्शा ही बदल दिया। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे अचानक सब कुछ बदल सकती है।
और भविष्य की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जिक्र भी होगा, ईवीज।
जरूर, टेस्ला जैसी कंपनियों ने इसे चर्चा में ला दिया है। ये तेल उद्योग के लिए एक बड़ा संभावित खतरा बन सकती हैं। लेकिन येर्गन यहां भी संतुलन साधते हैं।
कैसे?
वो याद दिलाते हैं कि सड़कों पर करोड़ों पेट्रोल डीजल गाड़ियां पहले से मौजूद हैं, उनको बदलने में दशकों लगेंगे, और ईवीज के लिए बैटरी बनाना, उनके लिए लिथियम कोबाल्ट कहां से आएगा, चार्जिंग स्टेशन लगाना, ये सब भी बड़ी चुनौतियां हैं।
तो निचोड़ क्या है फिर? भविष्य कैसा होगा?
निचोड़ ये है कि कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं। येर्गन कहते हैं कि भविष्य में हमें एनर्जी के अलग अलग स्रोतों का एक पोर्टफोलियो बनाना होगा।
मतलब मिला जुला कर चलना होगा।
कुछ पुराना, कुछ नया, सबको मिलाकर चलना होगा, तभी हम दुनिया की बढ़ती जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और क्लाइमेट चेंज से भी निपट पाएंगे।
इस पूरी बातचीत से कुछ मोटी मोटी बातें उभर कर आती हैं। पहली और शायद सबसे अहम, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है।
बिल्कुल, दुनिया भर की सरकारें चाहे जो कहें, उनकी पहली चिंता यही होती है कि देश को जरूरत के हिसाब से बिना रुकावट एनर्जी मिलती रहे। पर्यावरण या कीमत अक्सर बाद में आते हैं।
और भारत में हम इसे बखूबी समझते हैं, है ना? हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस बाहर से खरीदते हैं।
हाँ, हमारे आयात निर्भरता बहुत ज्यादा है, इसलिए सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को हिला सकती है। हमारी सरकार की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा इसी पर केंद्रित होता है, एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखना।
दूसरी बड़ी बात जो समझ आई, एनर्जी, पैसा और सियासत, ये तीनों बुरी तरह गुंथे हुए हैं।
हाँ, इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। तेल की कीमत गिरती बढ़ती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। कौन सा देश किस देश तक गैस पाइपलाइन बिछाएगा, ये सिर्फ बिजनेस का फैसला नहीं होता, ये विदेश नीति का हथियार भी होता है।
इसे हम अपनी जेब पर महसूस करते हैं, है ना? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है
तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। दूर देश में होने वाली घटना का असर सीधे हमारे घर के बजट पर पड़ता है।
तीसरा सबक, टेक्नोलॉजी असली वाइल्ड कार्ड है।
हाँ, ये कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। किसी ने सोचा था कि शेल क्रांति अमेरिका को एनर्जी सुपर पावर बना देगी,
या सोलर पैनल इतने सस्ते हो जाएंगे?
बिल्कुल, कल कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो सब कुछ बदल दे, कहना मुश्किल है।
हाँ, और भारत में सोलर एनर्जी का इतनी तेजी से बढ़ना इसी का उदाहरण है। कुछ साल पहले किसने सोचा था कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर उत्पादकों में से एक बन जाएगा?
सही बात है, टेक्नोलॉजी और सही नीतियों ने मिलकर ये संभव कर दिखाया। फैला हुआ तेल, गैस, कोयले का जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पाइपलाइन, पावर प्लांट, रिफाइनरी, उसे बदलना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है।
ये भारत के लिए एक बड़ी दुविधा है। हमें विकास भी करना है, करोड़ों लोगों को बिजली देनी है,
और साथ ही कोयले पर निर्भरता भी कम करनी है। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है और इसमें वक्त लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है।
किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे योर्गिन कहते हैं, जिसका मतलब है सरकारों के लिए ऊर्जा का पहला सिद्धांत सुरक्षा है, सस्ती कीमतों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे और समाज में स्थिरता बनी रहे।
हाँ, ये सीधी और थोड़ी कड़वी बात है। इसका मतलब है कि स्थिरता और सप्लाई की गारंटी अक्सर लागत या पर्यावरण से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, इसलिए कई देश जानते हुए भी कोयले जैसे स्रोतों पर टिके रहते हैं,
या अपनी एनर्जी सप्लाई लाइनों की हिफाजत के लिए भारी फौजी खर्च करते हैं।
बिल्कुल।
एक और दमदार विचार, प्रौद्योगिकी वो अनदेखी ताकत है जो ऊर्जा की दुनिया को लगातार नया आकार देती है, कमी को बहुतायत में बदलती है और आज की सोच को कल पुराना बना देती है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमें भविष्यवाणियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। पीक ऑयल बार बार गलत साबित हुआ।
शेल क्रांति इसका सबसे बड़ा सबूत है।
बिल्कुल, कौन जानता है कल कोई ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाए जो सोलर विंड की इंटरमिटेंसी वाली समस्या ही खत्म कर दे। उम्मीद रखनी चाहिए।
और एक और अहम बात, कम कार्बन वाले भविष्य की ओर महान ऊर्जा संक्रमण कोई घटना नहीं बल्कि दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया होगी। नई ऊर्जा प्रणाली लंबे समय तक पुरानी प्रणाली के साथ साथ ही बनेगी।
हाँ, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो सोचते हैं कि हम रातों रात फॉसिल फ्यूल बंद करके रिन्यूएबल पर चले जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है।
हकीकत नहीं है।
हाँ, हकीकत नहीं है। मौजूदा सिस्टम को बदलने में भारी पैसा और वक्त लगेगा। हकीकत यही है कि दोनों सिस्टम कुछ समय तक साथ साथ चलेंगे, पुरानी और नई दोनों।
तो सवाल ये उठता है कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें हमारे यानी आम इंसान के लिए क्या मायने रखती हैं? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक ज्यादा जानकार नागरिक बन सकते हैं। जब हम एनर्जी से जुड़ी खबरें पढ़ें या सुने तो सिर्फ हेडलाइन पर ना रुकें,
मतलब गहराई में जाएं।
हाँ, समझे कि हर फैसले के पीछे कई पहलू होते हैं, सुरक्षा, कीमत, पर्यावरण, राजनीति। कोई भी समाधान आसान नहीं होता, सब में कुछ न कुछ समझौते होते हैं।
निवेशक या बिजनेस करने वालों के लिए भी ये समझ जरूरी है ना?
बहुत जरूरी है। कहाँ मौके हैं, कहाँ जोखिम है, पारंपरिक एनर्जी में भी कितना दम बाकी है, नई एनर्जी कितनी तेजी से बढ़ेगी, सप्लाई चेन कितनी मजबूत है या कमजोर है, ये सब जानना जरूरी है।
और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे समझने का नजरिया बदल जाता है।
बिल्कुल, रूस और यूरोप के बीच गैस पाइपलाइन का झगड़ा हो या चीन का अफ्रीका में निवेश या समंदर में तेल के लिए बढ़ता तनाव, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं लगती फिर।
ये सब एनर्जी की वैश्विक खींचतान का हिस्सा लगती हैं।
हाँ, उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा।
व्यक्तिगत स्तर पर भी फर्क पड़ता है।
पड़ता है। हम पेट्रोल या बिजली के बढ़ते दामों के पीछे की वजहों को बेहतर समझ सकते हैं, और जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं जैसे
हाँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें या नहीं।
हाँ, ये आजकल बड़ा सवाल है।
तो हम सिर्फ अपनी जरूरत या खर्च नहीं देखते, हम ये भी सोच सकते हैं कि इसका बड़े सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, बैटरी के लिए सामान कहाँ से आएगा, उसके पीछे की कहानी क्या है,
चार्जिंग की सुविधा कैसी है, हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ग्रिड पर लोड कितना बढ़ेगा, और जो बिजली चार्जिंग में इस्तेमाल होगी वो आ कहाँ से रही है, कोयले से या सोलर से।
ये तो सोचने वाली बात है।
हाँ, जैसे कोई कार खरीदने की सोच रहा हो, इस किताब को पढ़ने के बाद वो शायद सिर्फ पेट्रोल कार और ईवी की कीमत और माइलेज की तुलना नहीं करेगा,
वो और भी चीजें सोचेगा।
हाँ, वो ईवी के बारे में सोचेगा, बैटरी की पूरी सप्लाई चेन, उसका पर्यावरणीय असर, चार्जिंग स्टेशंस, बिजली का स्रोत। दूसरी तरफ पेट्रोल कार के बारे में सोचेगा, तेल के दाम का क्या भरोसा, प्रदूषण कितना होता है, मतलब फैसला ज्यादा गहरा और जिम्मेदार हो जाता है।
और हाँ, वो पांचवा ईंधन, एनर्जी एफिशिएंसी।
हाँ, उसे नहीं भूलना चाहिए। घर में बिजली बचाना, जरूरत ना होने पर लाइट पंखा बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, ये छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं अगर सब करें तो।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक निकला वो शायद ये है कि टेक्नोलॉजी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। शेल क्रांति ने सचमुच सब कुछ बदल दिया।
हाँ, बिल्कुल।
ये दिखाता है कि भविष्य के बारे में दावे करना कितना मुश्किल है, और ये भी कि एनर्जी ट्रांजिशन वाकई कितना लंबा और जटिल सफर है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
और मेरे लिए सबसे अहम बात रही वो एनर्जी एफिशिएंसी वाली, पांचवां ईंधन। हम हमेशा नई सप्लाई ढूंढने पर जोर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे समझदारी से इस्तेमाल करना शायद ज्यादा जरूरी है।
सही कहा।
और दूसरा, ये एहसास कि इस पूरे मामले में कोई आसान जवाब नहीं है, ये इतना उलझा हुआ है कि हमें हर पहलू पर गौर करना होगा और शायद थोड़े समझौते भी करने होंगे।
तो चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
हाँ, जरूर।
इतनी सारी जटिलताओं को देखते हुए ऊर्जा के बारे में हमारी रोजमर्रा की सोच या आदत में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हो सकता है जो अगर हम सब करें तो मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।